दिन भर शुक्रवार 27 नवंबर मैं हूं निखिल रंजन। संसद में संविधान पर चर्चा में गूंजा आपातकाल और हिटलर का नाम, लेकिन प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर की महिमा को किया नमन।
कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक हैं, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है।
मुंबई में एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार करने वाले चार साथी पुलिस की गिरफ्त में। भारत में विज्ञापन संसार के बड़े रचनाकार पीयूष पांडे के लिए क्यों इतना खास है मिले सुर मेरा तुम्हारा।
85 में मेरे फादर गुजर गए थे और 87 में मैंने ये लिखा था। वो हमेशा वो रोती थी कि काश तुम्हारे फादर होते तो आज कैसे अपने दोस्तों।
ये सब सुनिएगा आज विवेचना में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दो दिनों को संविधान दिवस के तौर पर मनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया है। आज इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर अपमान झेले, लेकिन संविधान के किसी शब्द में बदले की भावना नहीं झलकती। हमें सिर्फ अपने हकों की बात नहीं करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान के बारे में आम जनता में जागरूकता लाना जरूरी है,
लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सीमित रखना नहीं है, इसको जनसभा तक ले जाना है। व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचे, समझे, चर्चा करें। एक निरंतर मंथन चलता रहना चाहिए।
ये थे प्रधानमंत्री मोदी के शब्द। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अंबिका सोनी को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख घोषित किया गया है। इन नई नियुक्तियों को राज्य में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई में चार स्कूली लड़कों को अपनी सहपाठी के कथित गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन किशोरों ने गैंगरेप का वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया। पीड़िता की एक रिश्तेदार ने इसे देखा तो ये बात सामने आई। ये घटना उस वक्त सामने आई है जबकि निर्भया कांड का नाबालिग अभियुक्त कैद से रिहा होने वाला है। पेरिस में चरमपंथी हमलों में मारे गए लोगों की याद में आयोजित एक मेमोरियल सर्विस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलान ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी हंसी अब कभी नहीं सुनाई देगी, लेकिन फ्रांस उन मूल्यों को हमेशा याद रखेगा जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि चरमपंथी फ्रांस को विभाजित करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। उन्होंने दुनिया भर से फ्रांस को मिल रहे समर्थन के लिए तमाम देशों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। चीन अपनी सेना के ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव के और ब्यौरे सार्वजनिक कर रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना के चार विभागों के नियंत्रण को केंद्रीकृत किया जाएगा, इससे सेना और मजबूत होगी। विश्लेषकों का मानना है कि सेना के ढांचे में बदलाव से कम्युनिस्ट पार्टी को सेना पर अधिक नियंत्रण मिल जाएगा, जो कई आलोचकों की नज़र में भ्रष्ट और निकम्मी होती जा रही है। इसराइल का कहना है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में राजनयिक शिष्टमंडल की शुरुआत करना चाहता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। इसराइल के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमीरात में इसराइल की यह पहली आधिकारिक उपस्थिति होगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। आज शुक्रवार है और आप सबके साथ ही हमें भी इंतजार है विवेचना का, जो रेहान फजल लेकर के आएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ अहम खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। संसद में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। पूरे दिन गर्मा गर्म बहस हुई और आपातकाल से लेकर हिटलर तक का जिक्र हुआ। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके का इस्तेमाल विपक्ष पर हमले के लिए किया तो उनका जवाब देने में गुलाम नबी आज़ाद भी पीछे नहीं रहे। शाम को प्रधानमंत्री आए और फिर बहस का रुख बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रित हो गया। पूरा हाल सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
संसद में संविधान पर चर्चा का जवाब देने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि का जिक्र करते हुए कहा कि हर विचारधारा को मानने वाला अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के कथनों का इस्तेमाल करते हैं।
दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं, इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घ दृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक हैं, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान का स्वरूप समावेशी है और ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम भेदभाव और प्रताड़नाएं सहने के बावजूद संविधान में इसकी दुर्भावना नहीं पहुंचने दी और बदले की भावना से मुक्त होकर संविधान का स्वरूप तैयार किया।
हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है और एकाध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो छुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित माँ का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है।
प्रधानमंत्री ने तो देश के निर्माण में पिछली सरकारों और प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र किया, लेकिन इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली इस मामले में इतनी उदारता नहीं दिखा सके। कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकारों को आपातकाल के लिए निशाना बनाते हुए उन्होंने जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से कांग्रेस नेताओं की तुलना की। जेटली ने कहा कि संविधान के प्रावधानों का ही इस्तेमाल कर संविधान को उलटने की कोशिश की गई।
सो यू इम्पोज इमरजेंसी, यू डिटेन द ऑपोजिशन, यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू इम्पोज सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर्स।
तो आप आपातकाल घोषित करते हैं, विपक्ष को रोक लेते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, अखबारों को नियंत्रित करते हैं और 25 बिंदुओं का आर्थिक प्रस्ताव लाते हैं। मेरा मतलब है जर्मनी में 25 बिंदुओं का प्रस्ताव। और फिर आप एक ऐसा कानून लाते हैं जिसके अनुरूप सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम के खिलाफ कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संविधान भी बदला गया और उनका भाषण ये कहकर खत्म हुआ कि एडोल्फ हिटलर ही जर्मनी है और जर्मनी का मतलब हिटलर। जेटली को जवाब दिया कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहानी बताते हुए उनके महत्व का एहसास दिलाते गए और साथ ही ये भी कहा कि संविधान भारतीय समाज में इस तरह समाया है कि उसे कोई उलट नहीं सकता।
अगर सरकार की तरफ से और माननीय लीडर ऑफ हाउस की तरफ से उन तमाम लीडरों को भी याद किया जाता जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान बनाने में मदद की, हिस्सा लिया या बुनियाद रखी, उनका नाम कहीं जिक्र नहीं हुआ, उनकी चर्चा नहीं हुई। हमने जर्मनी की बात की, हिटलर की बात की। यही तो आप मुसीबत है कि आप डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उसी पर आप चल रहे हैं।
संविधान पर चर्चा ऐसे वक्त में हुई है जब असहिष्णुता पर बहस जोरों से हो रही है, सरकार और विपक्ष की आपसी नोकझोंक भी चरम पर है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है।
संसद में हुई चर्चा का हाल बता रहे थे वैभव श्रीवास्तव। इधर मुंबई में 4 स्कूली छात्रों ने अपनी ही क्लास की एक छात्रा का बलात्कार करने के बाद उसका वीडियो व्हाट्सएप पर डाल दिया। पीड़ित छात्रा की मौसी ने घटना के बारे में पुलिस को इसकी जानकारी दी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा ब्यौरा सुनिए अश्विन अघोर से।
मुंबई के मलाड इलाके में 4 नाबालिग लड़कों द्वारा एक नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार करने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले के अभियुक्त तथा पीड़ित लड़की एक ही क्लास में पढ़ते थे और पढ़ाई के सिलसिले में एक दूसरे के घर आना जाना था। घटना 8 नवंबर की है, जब इनमें से एक अभियुक्त ने पीड़ित लड़की को फ़ोन करके अपने घर बुलाया ये कहकर कि उसे पढ़ाई में कुछ समस्या है जिसका आकर वो हल कर दे। जब लड़की उस घर पहुंची तब देखा कि वहां तीन लड़के और पहले से मौजूद थे और घर में कोई दूसरा घर का कोई नहीं था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए लड़कों ने उस पर बलात्कार किया और उसका वीडियो शूटिंग किया। लड़की को धमकी दी गई थी कि यदि वह किसी को इस बारे में बताएगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इस वीडियो को हथियार बनाकर इन चार लड़कों ने 8 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वीडियो उसी वक्त वायरल किया जाएगा अगर वो किसी से बात करेगी, लेकिन इनमें से एक अभियुक्त ने वह वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दिया। 25 नवंबर को लड़की की मौसी को इस मामले में पता चला और इस बात की उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मलाड पुलिस ने चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उन्हें डोंगरी के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। इस बारे में हमने मलाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत सांडबोर से बात की।
वो इंसिडेंट 8 तारीख का था लेकिन 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को लड़की के मौसी ने यहाँ कंप्लेंट की और उसके बेसिस पे हमने एक केस रजिस्टर किया है। चारों एक्यूज को जो 15-16 साल के है उनको हमने अरेस्ट किया है और उसमें ये जब ये गैंग रेप हो रहा था तो उस वक्त ये चार लड़कों की ने वीडियो शूट किया। वीडियो मोबाइल पे वीडियो शूट किया
जी
और वो व्हाट्सएप के थ्रू सबको सर्कुलेट किया।
फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है?
फिलहाल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हमने किया है, मोबाइल सी किया है, बाकी वो जो स्टेटमेंट लेना वगैरह वो तपास जो बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन वो चालू है अभी तक मेडिकल वगैरह।
ये थे शशिकांत सांडबोर जो मामले की जानकारी दे रहे थे।
ब्यौरा सुना रहे थे मुंबई से अश्विन अघोर।
बीबीसी इंडिया बोल।
अच्छी लड़की घरेलू संस्कार होने चाहिए, दुनियादारी में अच्छी समझ होनी चाहिए।
अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं नशे की तरफ।
अच्छी लड़की के अंदर घर के काम करने के सारे गुण होने चाहिए। घर का काम, बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना।
आपकी नज़र में अच्छी लड़की की क्या परिभाषा है? इस बार इंडिया बोल में बात होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 28 नवंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। इंतजार किस बात का?
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी जरूर फोन करके बताइएगा और अपने सवाल पूछिएगा। आपने अपने जीवन में वो सब चीजें देखी होंगी जो विज्ञापनों के बादशाह पीयूष पांडे ने अपने जीवन में देखी हैं। मोची, बढ़ई, क्रिकेटर, ट्रेन, गांव, शहर और कस्बे। लेकिन जो चीज पीयूष को दूसरों से अलग करती है वो है उसी चीज को दूसरे नजरिए से देखने की उनकी क्षमता। फेविकोल से लेकर कैडबरीज, लूना और सेंटर फ्रेश के जीव लपलपाई जैसे कितने ही विज्ञापनों ने आपको ठिठकने और मुस्कुराने के लिए मजबूर किया होगा। हाल ही में उन्होंने अपने संस्मरणों पर एक किताब लिखी है, पेंडिमोनियम। आज की विवेचना में रिहान फजल नज़र दौड़ा रहे हैं पीयूष पांडे के अब तक के सृजनात्मक सफर पर।
मिले सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के।
सालों पहले लोक संचार परिषद के लिए पीयूष पांडे के लिखे इस गीत ने उन्हें भारत के ब्रांड निर्माताओं की पहली कतार में ला खड़ा किया था। इसके बाद तो उनकी तरफ से विश्व स्तर के एड कैंपेन्स की झड़ी सी लग गई। लूना, कैडबरीज, फेविकोल, सेंटर फ्रेश और न जाने क्या क्या। भारतीय जनमानस से संवाद स्थापित करने का पहला पाठ पीयूष ने अपने पिता से सीखा था। जयपुर की बर्फीली सुबहों में लिहाफ में गुड़मुड़ियाए 5 साल के पीयूष को उनके पिता अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाते हुए जगाया करते थे। चिड़िया चू चू करके बोली, भोर निकलकर आई क्या, बिटिया पड़ी बिछौना पूछे, अम्मा चाय पकाई क्या।
बचपन से ही सब लोग घर में हिंदी बोलते थे, मेरी बहनें भी हिंदी बोलती थीं, मेरे माता पिता को बहुत शौक था, दोनों बहुत साहित्य पढ़ते थे हिंदी का। सोचने का एक तरीका और हंसने का तरीका और रोने का तरीका सभी हिंदी में था।
दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़े पीयूष पांडे से मैंने पूछा कि आम तौर से माँ बाप अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर, आप विज्ञापनों की दुनिया में किस तरह आ गए?
देखिए, इंजीनियर और डॉक्टर तो मेरे माँ बाप ने बनाने की काफी कोशिश की थी स्कूल में, मगर अगर मैं डॉक्टर बनता तो शायद रोगियों को बड़ी परेशानी होती, और इंजीनियर बनता तो कई घर टूटते। तो सेंट स्टीफन्स कॉलेज ने मुझे सिर्फ आर्ट्स में एडमिशन दिया और वहां से मेरी जिंदगी थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि साइंस मैथ्स मेरे बस का रोग नहीं था और क्रिकेट के जरिए मेरे को एडमिशन मिला और उन्होंने सिर्फ मेरे को आर्ट्स दिया और मेरे को एकाएक लगा कि शायद यही मेरी कॉलिंग है। और पहले साल ही में मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप्स पे पढ़ा। पहली नौकरी मेरी एडवर्टाइजिंग नहीं थी, पहली नौकरी अरुण लाल और मैंने साथ में डिसाइड किया था कॉलेज में कि जहां भी नौकरी करेंगे साथ में करेंगे, कहां करेंगे कि कुछ नहीं मालूम था। अरुण मेरे से एक साल सीनियर हैं, तो वो टी कंपनी में टी टेस्टर बन के चले गए थे। जब मैंने एमए फिनिश किया तो उन्होंने मेरा बायोडाटा मंगाया और कंपनी ने मुझे भी नौकरी दे दी। तो मैंने 3 साल टी टेस्टिंग की और फिर एक दिन अरुण और उनकी पत्नी रीना ने कहा कि हमारे कॉमन फ्रेंड थे जो एडवर्टाइजिंग में थे, तो उनका काम हम देखते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम जो चीजें बोलते हो दिन भर वो तो इन चीजों से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं करते हो। तो तब मैं बंबई आया और काफी भागदौड़ करने के बाद में ओगिलवी ने मुझे नौकरी दी और आज भी मैं वहीं हूँ 33 साल बाद।
वैसे इस सब की नींव बहुत पहले जयपुर में रखी गई थी, जब पीयूष की बड़ी बहन और आज भारत की मशहूर गायिका इला अरुण विविध भारती के लिए जिंगल्स बनाती थी और उसमें आवाज देने के लिए पीयूष को 50 रुपए मिला करते थे।
सारा कुछ जो था 7 सेकंड के 200 रुपए मिलते थे और 10 सेकंड के कोई 250 या 300, तो एक एक्यूमुलेट होकर कुछ चीजें आती थी और उसमें भी प्रोडक्ट से ज्यादा उनका एड्रेस, जैसे कि माया अगरबत्ती तो एड्रेस इतना बड़ा था, लालजी सांड का रास्ता, जौहरी का बाजार, सौतलियों का रास्ता तो वो मजेदार चीज। तो आवाज हमारे घर में अच्छी थी पीयूष की, घर में ही हम लोगों ने एक स्टूडियो बना रखा था और मेरी उस पब्लिसिटी का सबसे बड़ा योगदान पीयूष का, उन्होंने 5-6 तभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइन होगी। एक था मेरी पसंद का एक साबुन झागो झागो और उसमें पीयूष कहते थे झागो झागो कपड़े इससे अच्छे धुलते झागो साबुन झागो झागो।
पीयूष को शुरू से ही वन लाइनर्स और पंच लाइन देने में महारत हासिल थी, नामी क्रिकेटर और उनके जिगरी दोस्त अरुण लाल याद करते हैं।
शुरुआत में उनको उनमें कोई एडवर्टाइजिंग की ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उनके मन में ये थी बात कि मैं मार्केटिंग में नाम कमाना चाहता हूँ एक या फिर एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता हूँ। उनके लिए तो खैर एडवर्टाइजिंग तो एक एक्सीडेंट था और कहाँ तक पहुँचे, कमाल ही कर दी उन्होंने। पर इनमें मैं ये पहले भी कहूंगा कि इनमें ये गुण था, ये राइम बहुत अच्छा करते थे, इनका मन ही ऐसे चलता था जिस तरह इनका मन सोचता है, औरों का सोचता ही नहीं है। और कई बार इतने ह्यूमरस इतने वन लाइनर्स निकलते थे इनके, तो मैं उस टाइम भी कहता था जब हम चाय की कंपनी में काम करते थे इकट्ठे कि यार तुमको एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए, यहाँ पे चाय की कंपनी में तुम वेस्टेड हो। किसी को भी कोई स्लोगन चाहिए होता था तो पीयूष के पास जाते थे। और हिंदी का इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, हिंदी में सोचते हैं और जिस तरह का नजरिया है ना कि डे टू डे लाइफ को ये बहुत करीब से समझते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं।
चल मेरी लूना के विज्ञापन से पीयूष ने पहली बार अपनी पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी एक कृति पहली बार अपने पड़ोसी के टेलीविजन पर देखी और वो भी उनकी खिड़की के शीशे से।
वो किस्सा यह है कि मैंने अपना जो पहला छोटा सा एक अपार्टमेंट लिया था बम्बई में, उसके लिए थोड़ा बहुत लोन HDFC ने मुझे दिया था मेरी औकात के हिसाब से और बाकी पैसे मैंने अपने दोस्तों से अपने परिवार से लिए थे। तो मैंने एक सोच बनाई थी कि जब तक सबके पैसे नहीं लौटा दूंगा, HDFC को तो खैर 10 साल का मोहलत थी मेरे पास, मगर बाकियों के पैसे जब तक नहीं लौटाऊंगा मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। तो मैं TV नहीं ले पाया था और मुझे बड़ा शौक था कि मेरा एड जब पहली बार TV पे आए उसी दिन पब्लिक के पास पहुंचता है, तो मैं देखना चाहता था। तो मैं अपने पड़ोसी को रिक्वेस्ट किया, हम सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, कि मैं आपकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर एक बार देख लूं, मुझे सांत्वना हो जाए कि मेरा एड आ गया है। तो वो बोले नहीं, अंदर आके चाय पीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं खिड़की से देख लूंगा। तो देखा और वो प्रूफ ऑफ द पुडिंग उसी दिन होती है जब आपका एड लोगों तक पहुंचता है।
उनका कैडबरीज का कुछ हास है वाला विज्ञापन याद करिए, जब एक क्रिकेटर छक्का लगाता है और उसकी माशूका सारे सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए बीच मैदान में जाकर डांस करने लगती है। मैंने पीयूष से पूछा कि कहीं आप अब्बास अली बेग से तो इंस्पायर नहीं हुए थे, जिनके साथ भी कुछ इससे मिलता जुलता वाकया हुआ था।
इंस्पायर नहीं था, आई थिंक इंस्पिरेशन कई थे। पहली बार तो आइडिया किसी भी चीजों से इंस्पायर नहीं था, आइडिया था कि मैं लोगों को बताऊं कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जिसे हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उसको छुपाने लगते हैं, मगर उस बच्चे की जो खूबसूरती है वही जिंदगी की खूबसूरती है। तो सारी कैंपेन ही थी कि एक ना एक दिन आपको लगता है कि अरे मैं क्यों नहीं बरसात में नाच सकता हूँ। सारे टाइम हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है आपके बारे में कहने की। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करिए। आपको लगता है कि अब्बास अली बेग, ब्रजेश पटेल के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार, पर इनसे मैं इंस्पायर नहीं हुआ था। मैं इंस्पायर हुआ था एक अंग्रेजी पिक्चर में, एक वो भी मैंने बाद में ही देखा था कि जहाँ एक बाप अपने बच्चे को बेसबॉल में, बच्चा बड़ा वीक था बेसबॉल प्लेयर, जो ऊंचा कैच आता है और वो पकड़ लेता कैसे न कैसे, तो वो बाप खुशी से पागल हो जाता है और बच्चों की तरह उसको सेलिब्रेट करता है।
कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी,
असली स्वाद जिंदगी का।
पीयूष के फेविकोल के बस वाले विज्ञापन को पूरी दुनिया में जितनी तारीफ मिली उतनी कम विज्ञापनों को मिली है, और फिर उनके फेविकोल के दम लगा के हिंसा का भी कोई जवाब नहीं।
फेविकोल की बैकग्राउंड मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्रेडिट उसके लिए क्लाइंट्स को जाती है। मुझे जब मौका दिया गया था फेविकोल पे काम करने का, तब ये भी नसीहत दी गई थी कि ये क्लाइंट कोई ज्यादा क्रिएटिव काम नहीं खरीदते, तो मैं बड़ा डरा हुआ गया था और दम लगा के हिशा लेके गया था, और वो क्लाइंट तो इतने समझदार निकले कि वो बोले नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, तुम छोटी ब्रांड के लिए क्यों बना रहे हो, तुम फेविकॉल के लिए बनाओ। मैंने फेवी टाइट के लिए लिखा था। वो फिर बोले वो लोग कि तुम सिर्फ रेडियो पे क्यों कर रहे हो, जाओ इसकी फिल्म बनाओ। और वहां से जो शुरुआत हुई वो जो जर्नी है वो अभी भी जारी है।
दम लगाकर जोर लगाकर
मानते ही नहीं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फर्नीचर का साथी जिसकी निशानी है हाथी, फेविकॉल। फेविकॉल ऐसे जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा न तोड़ पाए।
एक और विज्ञापन जिससे पीयूष को बहुत तारीफ मिली वो था SBI लाइफ, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी को एक हीरा उपहार में देता है। ये प्रसंग भी पीयूष के अपने खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है।
इसी को तुम अखबार में छुप छुप कर देख रही थी ना?
हाँ, क्यों?
देखो मैं ले आया।
पागल तो नहीं हो गए? कितने के हैं?
अरे कुछ भी नहीं।
नहीं नहीं लौटा।
ए अब बहुत शुभ दिन है, वो वैलेंटाइंस डे। इस दिन जो लोग प्यार करते हैं ना, एक दूसरे को कुछ न कुछ देते।
इस उम्र में कहाँ पहनूंगी हीरा।
अरे हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र।
SBI लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ लॉन्ग पेंशन।
मुझे याद है कि एक बार मेरी, उस वक्त तक हम दोनों भाई अपनी अपनी नौकरियों में अच्छा करने लगे थे, थोड़े बहुत पैसे भी हाथ में आ गए थे, तो मेरी बहनों ने कहा तुमको मालूम है तुम्हारी माँ को हीरे का बहुत शौक है, मगर वो उनकी आदत नहीं है कि कभी किसी से कुछ मांगे। तो हमने कहा कि चलो उनका शौक है तो हम लेके आते हैं। तो इतने पैसे नहीं थे कि एक आदमी इयर रिंग्स खरीद पाए दोनों ने मिल के एक एक खरीदा और उनके पास ले गए, तो वो रोने लगी क्योंकि ये तमन्ना उनकी पूरी हुई नहीं थी कभी। तो वो बोली उस टाइम पे बड़ी मॉडेस्टली कि इस उम्र में मैं क्या करूंगी हीरा। ये कहानी मुझे याद थी और मैंने सिर्फ एक ही लाइन उसमें ऐड करी कि हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र क्या है।
नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने का थोड़ा बहुत श्रेय पीयूष पांडे को भी दिया जा सकता है। उन्होंने ही अब की बार मोदी सरकार का नारा गढ़ा और अच्छे दिन आने वाले हैं की कैंपेन चलाई।
उन लोगों में बहुत क्लैरिटी थी, जो टीम हमको ब्रीफ कर रही थी उन्होंने कहा था कि हमारे पास रिसर्च है जो कहती है कि मोदी जी की जो इमेज है वो बीजेपी की इमेज से भी ऊपर है। तो ये डिसीजन उन्हीं का था कि वो मोदी सरकार से लीड करेंगे, बीजेपी सरकार से लीड नहीं करेंगे। तो उसके बाद में तो काम आसान हो गया था मेरे लिए टू राइट अप की मोदी सरकार। पर आई थिंक लाइनें फेमस होती हैं कॉन्टेक्स्ट से, एंड मुझे जिस बात का गर्व है कि हमने उसके कॉन्टेक्स्ट जो दिया उसके साथ में जो लाइनें लगाई कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। विश्व में बड़ी फेमस लाइन है जस्ट डू इट नाइकी शूज के लिए, और अगर आप लाइन को आइसोलेशन में देखेंगे तो कोई इतनी बड़ी लाइन नहीं लगती है, मगर जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे प्रस्तुत किया उससे आज वो लाइन लेजेंडरी हो गई है।
सबसे अच्छा क्योंकि
हम मोदी जी को, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
लेकिन पीयूष की जिस कृति पर उनकी माँ को सबसे ज्यादा नाज था वो था कालजयी मिले सुर मेरा तुम्हारा। उनका कहना था कि काश तुम्हारे पिता इस काम को देखने के लिए जीवित होते।
क्योंकि सभी लोगों के आस पड़ोसी रिश्तेदार जयपुर में रहने वाले लोग हर आदमी फोन कर रहे थे उनको और बता रहे थे कि, और उनको खुद को भी लग रहा था कि ये बहुत देश के लिए बहुत ही अच्छा काम है। तो उनकी ये तमन्ना थी कि जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी ना मेरी माँ को ना मेरे पिताजी को मालूम था कि एडवर्टाइजिंग में भी नौकरी होती है कोई। तो 85 में मेरे फादर गुजर गए थे और 87 में मैंने ये लिखा था। तो हमेशा वो रोती थी कि काश तुम्हारे फादर होते तो आज कैसे अपने दोस्तों में बता रहे होते कि देखो ये करता मेरा बेटा।
बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
रेहान फजल की ये विवेचना आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब खेल समाचार सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से। कहिए आदेश जी, आज तो क्रिकेट में बड़ी वाहवाही हो रही है लेकिन पिच को लेकर के बड़ी अजीब अजीब सी बातें कही जा रही है, क्या सुना रहे हैं आप खेल के समाचारों में?
जी देखिए, जो जीता वो सिकंदर। अगर भारतीय टीम हार जाती तो फिर उल्टे बांस बरेली होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नागपुर में नाको चने चबाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को मात नहीं दे सकी। भारत ने इस मुकाबले को 124 रन से जीता जबकि दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 310 रनों का लक्ष्य था। आज 32 रन पर 2 विकेट से आगे खेलते हुए उनकी पूरी टीम 185 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में थोड़े समय के लिए भारतीय खिलाड़ियों की धड़कनें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई जब कप्तान हाशिम आमला और फेफ डुप्लेसिस ने 5वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े। इसके अलावा पूरा दिन भारत का था। फेफ डुप्लेसिस ने 39 रन बनाए, हाशिम आमला ने भी 39 रन बनाए, जेपी डुमिनी ने 19 रन बनाए, डेन विलियर्स ने 12 रन बनाए। सबसे ज़्यादा उम्मीदें एबी डिविलियर्स से थी लेकिन वो आर अश्विन की कैरम बोल को समझ नहीं पाए और उनका स्टंप उड़ा। आर अश्विन ने 66 रन देकर 7 विकेट लिए, अमित मिश्रा ने 51 रन देकर 3 विकेट लिए और इसके साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 9 साल से चले आ रहे विदेशों में विजयी रथ को रोक दिया। क्योंकि पिछले 9 साल में जितनी भी टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने विदेशों में खेली है उसमें वो मात नहीं खा सका था। लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन, 15 मार्च 1877 को टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई और ठीक 138 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में डे नाइट टेस्ट मैच के रूप में मैदान में उतरे। दूध या रोशनी में गुलाबी गेंद के साथ ये टेस्ट मैच शुरू हुआ। इस गेंद की जो सिलाई है जिसे सीम कहा जाता है वो हरे धागे की है और आज का दिन वैसे बल्लेबाजों के लिए कुछ विशेष नहीं रहा क्योंकि 12 विकेट गिरे वहाँ पर। अब विकेट को लेकर क्या कहा जाए, विकेट तो कहीं भी ज़्यादा गिर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए और शाम होते होते न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के भी 2 विकेट 54 रन पर झटक लिए। तो अब देखना है कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है दूध या रोशनी में टेस्ट मैच का, लेकिन पहले दिन तो कामयाब रहा क्योंकि 47,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मैदान में मौजूद थे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संविधान दिवस पर चर्चा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जीवन भर अपमान झेले लेकिन संविधान के किसी शब्द में बदले की भावना नहीं झलकती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंबिका सोनी को 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की चुनाव प्रचार समिति की प्रमुख घोषित किया गया है। मुंबई में 4 स्कूली लड़कों को अपनी सहपाठी के साथ कथित गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पेरिस में चरमपंथी हमलों में मारे गए लोगों की याद में आयोजित एक मेमोरियल सर्विस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि फ्रांस उन मूल्यों को हमेशा याद रखेगा जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं हेमंत कुशवाहा, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।